कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चिरकारी का प्रसंग है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि कभी कभी एक बड़ी समस्या होती है पिता में, गुरुजन आज्ञा दे देते हैं कि ऐसा करो और वो आज्ञा उनकी धर्म के अनुकूल नहीं होती है, सर्वथा कार्य दुर्गेस्मिन, कार्य में बड़ी कठिनता होती है, कैसे माने है गुरुजनों की आज्ञा पर वो कोई अटपटी आज्ञा दे दे, में अब करें तो मुश्किल, नहीं करें तो मुश्किल, क्या करना चाहिए, उस कार्य की परख कैसे करनी चाहिए। पिता में भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर इस विषय में बहुत सुलझे हुए दिमाग से काम करना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा भी माननी है, लेकिन उस आज्ञा के मानने में यदि हिंसा वगैरह होती है तो पाप लगता है आज्ञा देने वाले को भी, आज्ञा पालक को भी, नहीं मानते हैं तो दोष लगता है, आज्ञा नहीं मानी इसका भी पाप लगता है, क्या करें। बहुत सूक्ष्म विषय है। इस विषय में हमको एक कथा याद आ गई। अंगिरा गोत्रोत्पन्न एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गौतम, जिनकी अहिल्या नाम की पत्नी थी। उनके एक चिरकारी नाम का एक लड़का था। नाम तो उसका जाने और होगा, चिरकारी बोलते थे क्योंकि वह हर काम में बड़े देरी से करता था, थोड़े से काम में लंबा समय लगाता था, बहुत देर तक सोचता रहता था, बड़ा बुद्धिमान था फिर भी खूब सोचता था। वो कभी कोई काम ऐसा नहीं करता जिससे कोई अपराध हो जाए, सब काम को खूब विचार करके करता, सोता रहता तो भी सोने में विचार करता कि ये समय सोने का है क्या, सोवे तो कितना सोए, ऐसे करते करते सोता ही नहीं था। और जगने का समय आता तो वो यूं नींद आने लग जाती, रात भर नहीं सोया तो क्या करे, तो हर काम में बड़ी देरी करता, भोजन करने में भी देरी करता, ये भोजन है इसमें इसको कैसे कितना चबाया जाए, ये गेहूं है गेहूं की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी से हुई है तो पृथ्वी में ये बीज कहां से आया कि भगवान से आया, फिर ये तो भगवान का ही रूप हो गया, इस अन्न को कैसे चबावे, अन्न को चबाने का मतलब भगवान को खाना है, भगवान को कैसे खाऊं, भगवान को कैसे पीऊं, तो चिरम कार्याभिपत्तिंचे चिरकारी तथोच्यते, हर बात में ऐसा चिंतन करता रहता तो लोग उसको चिरकारी बोलते थे। बहुत से लोगों ने तो कह दिया ये आलसी आदमी है, वो आलसी नहीं था, महान विचारक था। एक बार की बात है, गौतम नाम के ऋषि अपने पत्नी के अपराध से नाराज हो गए। असल में उसकी पत्नी का इतना अपराध नहीं था पर नाराज हो गए वो, और नाराज होकर के अपने बेटे चिरकारी से कहा, ए बेटा मेरी आज्ञा है, तुम्हारी माँ बड़ी दुष्टा है, इसका आचरण बड़ा खराब है, ये पापनी है, जाओ इस माँ को मार दो। इतना कहकर के वो तो जंगल में चले गए। चिरकारी ने कह दिया ठीक है महाराज, हां भर ली, कुछ बोला नहीं। बोलता कैसे, वो तो चिरकारी है। अब वो सोचता रहा कि पितुर आज्ञाम कथम कुरियाम, मैं पिता की आज्ञा कैसे मानूं और मां को भी कैसे मारूं, और पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा तो मैं एक धर्म का छल करने लग जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं भी असाधु पुरुषों के समान पाप में डूब जाऊंगा। पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म है और मां की रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म है। ओहो, कभी कभी पुत्रों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, विपरीत अवस्थाओं में क्या करे, पुत्र वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता। अस्वतंत्रं च पुत्रत्वं किं तु मां नानु पीड़येत्। वैसे भी एक मां है वो स्त्री जाति में है तो स्त्री जाति को कभी मारना नहीं चाहिए, ये तो मेरी मां है। मेरी मां न होकर यदि कोई भी स्त्री होती तो नहीं मारना चाहिए, और तो और पशु पक्षी में भी जो स्त्री जाति की होती है उनको बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, पशु पक्षियों में भी। कैसे मुझे पिताजी ने आज्ञा दे दी, और पिता की आज्ञा के ऊपर मैं भी कैसे बोल सकता था कि पिताजी आप ये अटपटी आज्ञा मुझे क्यों देते हैं, अब मैं क्या करूं। मेरे पिता वास्तव में बड़े शीलवान हैं, बड़े शुद्ध आचरण वाले हैं, बड़े कुल की मर्यादा को जानने वाले हैं, शील चारित्र ग्रोत्रस्य, और ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं, ऐसे पिता ने मुझे जन्म दिया है और मां ने मुझे अपने उदर में धारण किया है, मेरी मां ने मेरे अपराधों को सहन करके पाला है पोषा है, मैं दोनों में से किसी का भी ऋण नहीं उतार सकता हूं। पिता का प्रेम है वो पुत्र है, और माता का जो शरीर है वो ये पुत्र है, इसलिए न मां का वचन, न तो मां की रक्षा कर सकता हूं और न पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता की आज्ञा का पालन ये धर्म है, पिता की सेवा शुश्रूषा ये स्वर्ग है, पिता ही परमम तप है, पिता एक तपस्या का स्वरूप होता है, जिसके ऊपर पिता की कृपा होती है उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं, और जब कभी भी पिताजी कठोर वचन बोलते हैं, परुषम प्राह यत पिता, कठोर वचन बोलते हैं, उस समय पुत्र को उसको आशीर्वाद समझ करके प्रसन्न होना चाहिए और आदर से प्रेम से उन बात का अभिवादन पूर्वक जवाब देना चाहिए। पिता पुत्रम न मुंचति, जैसे फूल है वो डंठल से अलग हो जाता है, वृक्ष से फल अलग हो जाता है, परंतु पिता कभी भी अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि पिता का गोत्र ही पुत्र में आता है। पुत्र कहीं दूर देश में चला जाए तो भी वो पिता का ही कहलाता है, ऐसे पिता का गौरव पुत्र को मिलता है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। परंतु इधर मेरी मां है, मां के विषय में सोचता हूं कि मैं इस शरीर से मां को मारूंगा, जो शरीर मां ने मुझे दिया है, मां ने मुझे धारण किया है, माता देहारणी पुंसाम, मनुष्यों के लिए माता है, वो शरीर रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि है, अग्नि इसमें प्रकट अग्नि है, अरणि समस्त सुख और दुख में सांत्वना देने वाली माँ होती है। मातृलाभे सनातत्वम, जब तक माँ जीवित रहती है तब तक वो बच्चा चाहे कितने ही बरस का होता है वो उसको बाल रूप में देखकर उससे प्यार करती है, और वो बेटा भी माँ के रहते हुए कोई शोक नहीं करता, चिंता नहीं करता। पुत्र पौत्रोपपन्नोपी, बेटा हो गए उसके पोता हो गए फिर भी माँ है वो देहायन वच्चरे, दो वर्ष के बच्चे के समान उसका प्यार करती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है, उसके कपोल पर हाथ फेरती है, उसको पूछती है बेटा तुमने भोजन किया कि नहीं किया, तुमने जल पिया कि नहीं पिया, जैसे बचपना वैसा का वैसा माता का स्वरूप, माता का प्यार रहता है। नास्ति मातृ समा छाया, माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं। माँ के कितने कितने नाम हैं, कुक्षी संधारणा धात्री, कोख के अंदर हम लोग रहते हैं माता की कोख में, तो उसका नाम धात्री कहलाता है, जन्म देने के कारण से उसका नाम जननी होता है। अंगानाम वर्धनाद अम्बा, उसको अम्बा बोलते हैं, बच्चे के अंगों का वर्धन पालन पोषण करती है इसलिए उसको अम्बा बोलते हैं। और वीरसु त्वेन वीरसु, और अपने संतान को खूब श्रेष्ठ देखना चाहती है इसलिए उसका नाम वीरसु होता है। और माँ का नाम सुश्रु होता है, जिसको जो है क्या बताएं, हिंदी में सासु बोलते हैं। सासु क्यों बोलते हैं, सासु बोलते हैं शिशु सुशूषणा, बच्चों की बहुत ज्यादा सेवा करने के कारण से उसका नाम सुश्रु पड़ता है। माता और पिता का इतना ऊंचा स्थान होता है, माँ हमारे पिता से परिचय कराती है, माँ पिता के गोत्र को बताती है। स्त्री है उसका भरण पोषण करने वाला होता है इसलिए उसका नाम भर्ता होता है, स्त्री का पालन करने वाला वो होता है इसलिए उसका नाम पति होता है। पालनाद्धि पतिस्तथा, पति का अर्थ क्या होता है, वो पालन करता है, इसलिए पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने श्रेष्ठ स्वभाव वाले पुत्र की कामना करते हैं, वे अपने इष्ट देव को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे वंश में ऐसा लड़का हो जो धर्मात्मा हो, कल्याणकामी हो, जो स्वयं का भी उद्धार करे हमारा भी उद्धार करे, ऐसी जब वो विनम्र प्रार्थना करते हैं तो भगवान की कृपा से बच्चों का जन्म होता है। पिता है ये सब देवताओं का स्वरूप होता है, और माँ होती है वो संपूर्ण पृथ्वी का स्वरूप होती है। गौतम मेरे पिता, गौतम ने ये कैसे कह दिया कि अपनी माँ को मारो, असल में मेरी माँ का अपराध नहीं है, इंद्र स्वयं गौतम का स्वरूप बनाकर मेरे माँ को छल करके आया है, और इस इंद्र की स्वयं गौतम ने तो पहले पूजा की है। इंद्र जब ब्राह्मण का रूप बनाकर आया था तो गौतम ने उसका बड़ा स्वागत किया, आइए बैठिए उठिए, और स्वयं हमारे पिताजी ने भी कहा परवानस्मि चेत्युक्त है, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके अधीन हूँ। अत्र चा कुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रम है, ऐसी ऐसी बातें कही, सेवा शुश्रूषा की बात कही, और फिर इंद्र दोबारा उनकी अनुपस्थिति में आया, तब मेरी माँ ने ये समझा कि ये तो वास्तव में गौतम ऋषि है, मेरे पति है, उनको ध्यान नहीं रहा, ये काम तो अच्छा नहीं है कि मैं अपने पिता को मारूं, मैं अपनी माँ को मारूं। गहराई से देखा जाए तो न मेरी माँ का अपराध है और न इंद्र का अपराध है और न ही मेरे पिताजी का अपराध है, किसी का भी अपराध नहीं है। अपराध मेरी माँ का इसलिए नहीं है कि माँ को पता ही नहीं है कि गौतम ऋषि थे या इंद्र थे, और इंद्र को इसलिए अपराध नहीं लगता कि इंद्र देवता है। पाप पुण्य का ज्ञान देवताओं को नहीं होता है, वो तो मनुष्यों को होता है। अतएव वो भोग यो भोग प्रधान योनि में है इंद्र, इंद्र का भी कोई दोष नहीं और गौतम ऋषि का भी दोष नहीं। अब यदि मैं किसी प्रकार से ऐसे इनको यदि मार दूंगा माता को, तो मैं अपराधी बन जाऊंगा, ये तो कोई अपराधी रहेंगे नहीं। गौतम ऋषि को तो क्षण भर में क्रोध आ गया था, क्रोध के कारण से उन्होंने मुझे ये कह दिया कि मार दो। इस कारण से क्या करें, ऐसे वो विचार कर रहे थे। उधर गौतम ऋषि जहां जाकर के बैठ करके जप कर रहे थे, उनके मन में जैसे क्रोध आता है तो यूं सांस फूलने लगती है, और जप करते करते थोड़ी देर क्रोध शांत हुआ। अरे मैंने ये क्या आज्ञा दे दी, हत्वा साध्वीं च नारीं च, एक सती साध्वी स्त्री जिसके जीवन में कोई दोष नहीं, उसे ये पता ही नहीं था कि ये इंद्र है कि गौतम है, अन्यथा वो कभी भी इंद्र को पहचान लेती तो वो जो है कभी भी ऐसा कर्म नहीं करती। क्या करे, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने सती साध्वी को मारने के लिए अपने पुत्र को कह दिया, तो मेरा भी मुझे भी पाप लगेगा, मेरे पुत्र को तो नहीं लगेगा लेकिन वो अपनी माँ को मारेगा मेरे आदेश से। अरे चित्रकारी तू, अरे चिरकारी तेरा नाम आज सार्थक हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, समाम त्रायित पात का, तू मुझे आज बचा लेगा। अरे चिरकारी तू हर काम को देरी से करता है, इस काम को भी तू देरी से कर। त्राहि माम मातरं चैव, अरे बेटा तू अपनी माँ को बचाना रे, तू मुझे भी बचाना रे, मैंने जितनी तपस्या की है उनको भी बचाना रे और अपने आप को भी बचाना। हे चिरकारी तेरा नाम सार्थक कर, तेरा नाम सार्थक कर। ऐसे बिचारे घबराते घबराते आए और आकर के आंखें फटी हुई, चेहरा उनका बड़ा उदास हुआ, आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं। चिरकारी ने देखा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, उसके हाथ में तलवार थी, वो तलवार के मूठ को पकड़ करके यूं पिताजी को खड़ा देखने लग गया है। पिताजी को देखने लगा तो पिताजी आए, आए तो पिताजी ने कहा कि अच्छा पिताजी को तलवार उसके हाथ में, यूं पिताजी पास में आए, तलवार को फेंकी, चरणों में प्रणाम किया और पास में वो माँ खड़ी हुई थी। अब ये देख करके चिरकारी को छाती से लगाया कि बेटा तेरा नाम आज तुमने सार्थक कर दिया, तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। तो चिरकारी ने कहा कि महाराज मैं तो इस विषय में सोचता ही रहा कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। इतने में आप आ गए, मेरे हाथ में तलवार तो थी लेकिन आपकी आज्ञा पर खूब गंभीरता से विचार किया, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि मैं मारूंगा तो आपको पाप लगेगा और इससे पहले आपका कोई दोष नहीं, इंद्र का भी दोष नहीं, मेरी माँ का भी दोष नहीं, लेकिन अब यदि मैं मारता तो मुझे भी दोष लगता और आपको भी दोष लगता। मैं उस दोष के विषय में विचार कर रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर कुछ समझे मेरी बात का अर्थ, कि महाराज क्या कि बड़े आदमी कोई हमको अनुचित आज्ञा दे दे तो उस विषय पर खूब गहराई से विचार करो और उस काम को इसलिए मत करना कि भाई ये हमारे पिता ने अनुचित कहा है, ऐसे नहीं। तो इस अनुचित आज्ञा के पालन से पिता को नरक जाना पड़ेगा, पिता को कष्ट होगा, इस भावना से पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो। आज्ञा का उल्लंघन करने पर मुझे पाप लगता हो तो कोई बात नहीं, मुझे पाप भले ही लगे, लेकिन अशास्त्रीय आज्ञा पिता देते हैं, हिंसा आदि की आज्ञा पिता देते हैं, तो पिता को नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। बड़े आदमियों की आज्ञा का पालन उस अवस्था में नहीं करना चाहिए। आज्ञा देखो, मां को मारने की आज्ञा दे दे, इसलिए युधिष्ठिर ये ऐसी ऐसी जो पहेलियां आती हैं जीवन में, ऐसे नहीं सुलझती हैं, चिरकाल तक अपने अंदर रहने वाले काम क्रोध लोभ अहंकार इनको जीतो। पश्चाताप कर्म कर्म न किंचित उपपद्यते, सहसा यदि कोई भावावेश में आकर काम कर दोगे फिर पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जितना विचार करना हो पहले करो, बाद में करने से क्या होगा। ऐसी बुद्धि कब पैदा होती है, चिरम वृद्धान उपासित है, लंबे समय तक बड़े बूढ़े संत महात्माओं का, माता पिता का, घर में जो बड़े हैं उनके पास रहो, उनकी सेवा करो। चिरम वृद्धान उपासित है, चिरम अनवास्य पूजयेत, चिरकाल तक उनकी आज्ञा का पालन करो। चिरम धर्मम निषेवेत, चिरकाल तक उनके बताए हुए आदेश का पालन करो। कुरिया चान्वेषणम चिरम, और चिरकाल तक उस उपदेश को अपने अंदर काम में लेने का विचार रखो। चिरम अनवास्य विदुषस, चिरम शिष्टान निषेव्य च, विद्वानों का संग करो, शिष्ट पुरुषों के बीच में रहो। बड़े आदमियों के बीच कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस मात्रा में हंसना चाहिए, किस मात्रा में चुप रहना चाहिए, ये सब बातें कोई बताने से नहीं आती हैं, बड़े आदमियों का स्वभाव देखने से समझ में आता है। देखो, पौत्र होता है वो अपने पिता का पुत्र होता है, वो ये जानता है कि मेरे पिता मेरे दादाजी के बेटा है, तो वो पिता जो बर्ताव करता है उसको देखकर बेटा सीखता है। तो पुत्र का ये कर्तव्य है कि वह अपने बेटे को सही मार्ग में लाने के लिए स्वयं अच्छे पुत्र के समान अपने पिता के प्रति माता के प्रति व्यवहार करे। इस प्रकार की जो शिक्षा होती है ये अपने ही कुटुंब के अंदर सीखने की होती है। ऐसे चिरम पृष्ठो पिछ ब्रूया चिरम न परितप्यते, किसी बात के ऊपर गहराई तक विचार करेगा वो आदमी कभी संतप्त नहीं होगा। वो राजा ने कई बात पूछी है युधिष्ठिर ने कि महाराज मैं आपसे पूछता हूं कि राजा प्रजा की कैसे रक्षा करे कि प्रजा को हिंसा न करनी पड़े, राजा को हिंसा न करनी पड़े, किसी को मृत्यु दंड न देना पड़े, उसको किस प्रकार से शासन करना चाहिए। पिता मैंने कहा कि देखो, एक सत्यवान नाम का राजकुमार था, उसके पिताजी ने जो भी कोई अपराध करता सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, ऐसे उसने आज्ञा दे रखी थी राजा ने। तो सत्यवान जब बड़ा हुआ उसने देखा कि हमारे राजमहल के पास जो सूली है उस सूली के वहां पर कतार लगी हुई है, उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा पिताजी ये क्या हो रहा है, इतने आदमियों को आप सूली पर चढ़ाएंगे, ऐसा क्यों करते हैं। अरे बेटा, ऐसा यदि नहीं करेंगे तो यहां अपराध बहुत बढ़ जाएंगे, लोग हर आदमी की वस्तु लेके ये मेरी है निकलो यहां से, मम इदम इति नाशेत प्रवर्तेत कलयुगे, ऐसे कलयुग के अंदर कोई किसी के ऊपर जो है हक लगा करके चलेगा तो प्रजा की व्यवस्था और को जो है दंड विधान ये सब जो है काबू के बाहर हो जाएंगे, इसलिए इनको सूली पर चढ़ाएंगे। दूसरे लोग भी समझेंगे, नहीं पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सूली पर चढ़ाने का पाप मत लीजिए। आप यदि ये देखते हैं कि इनका यदि हम प्राण ले लेंगे तो दूसरे आदमी सीख लेंगे, ऐसे नहीं सीखे जाते। आपके यहां संत महात्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ पुरुष है कि नहीं, उनके पास इनको भेजो, शिक्षा का इन लोगों को मौका दो, इनको सुधरने का मौका दो। और आप उसके बाद भी ये न माने तब अंत में सब उपाय करने के बाद अंत में मृत्युदंड होता है, वो भी मृत्युदंड ऐसे नहीं होता है कि उसके माता पिता स्त्री पुत्र सब कलपते रहे, भार्या माता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुरुषेणते, वही तो आदमी जीव का चलाने वाला है, वही आपने मार दिया तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए, आप श्रेष्ठ पुरुषों का संग कीजिए, उनको पश्चाताप करने का भी मौका दीजिए, उनको बार बार ये समझाइए कि देखो ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। जब वो ब्राह्मणों के पास जाए और वो उसको धिक्कार दें कि अरे तेरे को इतना समझाया फिर भी तू नहीं सुधरा, धिक्कार तेरे को, सबके बीच में उसको धिक्कार की बात सुननी पड़े और फिर भी न माने, तब उसका जितना आजीविका का साधन है वो आप लीजिए। और फिर भी न माने तब कोई जाकर के अंत में इक्के दुक्के आदमी को दंड दिया जाता है, हर आदमी को ऐसे दंड नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से आत्मज्ञानियों के पास रहना चाहिए, उन लोगों को आत्मज्ञानियों के पास भेजना चाहिए, मौका देना चाहिए। और करिष्यामि पुनर्ब्रह्मन् न पापम इति वादिनः, आप तो हो गया सो तो हो गया, आइंदे ऐसा पाप नहीं करूंगा, ऐसे मन के अंदर यदि भावना पैदा होती है तो ऐसे आदमी को दंड नहीं देना चाहिए। और महाराज सबसे बड़ी बात है कि राजा का आचरण सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, जो दंड देने वाला होता है उसको ये देखना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैंने भी ऐसा कोई पाप किया हो। आत्मानम असमाधाय समाधि सति यह परान, जो अपना तो सुधार करता नहीं, समाधान करता नहीं, दूसरों को सुधारने में लगा हुआ है, विषयों के अंदर पड़ा हुआ है, उस आदमी को देख करके सब आदमी हंसते हैं कि वाह वाह, खुद को तो पता ही नहीं, आप बैठा बैंगन खाए, दूसरों प्रमोद बताए कि भाई बैंगन नहीं खाना, कांदे लहसुन नहीं खाना, बड़ा पाप लगता है, लहसुन खाने वाला मरता है तो 21 दिन में मर जाए तो नरक में जाता है, ऐसा शास्त्रों में आता है, लहसुन खा करके मरे तो 21 दिन के अंदर मर जाएगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, शास्त्र की बात है। और अपने खुद लहसुन खा करके साग में लहसुन छोंकते हैं तो ऐसे क्या फायदा भाई, ऐसे उपदेश से क्या फायदा। आत्म ही वह अदो नियंतव्य है, पहले ही पहले मनुष्य को स्वयं को अपना नियंत्रण करना चाहिए। दंड देओ तो अपने को देओ पिताजी, और फिर उसके बाद अपने परिवार में यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको दंड देओ, फिर उसके बाद दूसरों को यदि दंड देना हो तो अहिंसा पूर्वक दंड देओ। सतयुग के अंदर अहिंसा प्रधान दंड होता था और बाद में कलयुग में आते आते ये दंड का विधान कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द्युमत सेन ने कहा अच्छी बात है, ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये बात चली। फिर बीच में एक संवाद आता है, ये संवाद है सूर्य रश्मि और कपिल भगवान का। कपिल भगवान एक बार कहीं गए ऋषि के यहां, त्वष्टा देवता के यहां, तो वहां त्वष्टा देवता ने उनको एक गाय दी। तो गाय दी लेकिन वैदिक विधि के अनुसार नहीं दी, उन्होंने और ही ढंग से वो गाय दी। तब कपिल भगवान बोले कि अरे वेदों के तत्व को ये लोग जानते नहीं है। तो गाय के अंदर एक ऋषि ने प्रवेश किया, उसका नाम था श्यूम रश्मि। वह गाय के अंदर बैठा बैठा प्रश्न करता है कि महाराज वेदों के लिए वास्तविक तात्पर्य किस बात में होता है। वेदों में तो कहीं कहीं हिंसा की बात आती है, यज्ञ के अंदर हिंसा भी होती है, क्या आप हिंसात्मक बातों पर विश्वास करते हैं? कपिल भगवान ने कहा नहीं नहीं, वेदों में जो हिंसा आती है वो अहिंसक बनाने के लिए आती है, इसलिए अहिंसक रहना चाहिए। तो वो अंदर से प्रश्न करता है कि महाराज ऐसा क्या है, अहिंसक कैसे, वहां तो साफ कहा है कि पशु का वध करो, तो ये आज्ञा क्यों हुई है? कहते हैं वैदिक सर्व कर्म में आज्ञा नहीं है, कुछ ही कर्म में आज्ञा है। ऐसा क्यों हुआ कि जब प्रजा के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ने लगी तब सब तरह से हिंसा को रोकने के लिए वेद ने आज्ञा दी कि देखो तुमको यदि हिंसा करनी है तो इस कर्म के करने में यज्ञ करो और उसमें एक पशु की हिंसा कर सकते हो। फिर वहां पशु की हिंसा के साथ ये भी कहा कि उसका प्राण वियोग मत करो, शस्त्र लेकर तलवार का स्पर्श करा दो, बस ये तलवार का स्पर्श हो गया उसको छोड़ दो। ये तात्पर्य करने में है। फिर उन्होंने गृहस्थ का धर्म पूछा कि महाराज मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या सन्यास की आवश्यकता है, क्या गृहस्थ में मोक्ष नहीं हो सकता है? तब कपिल भगवान कहते हैं कि गृहस्थ का जितना आसानी से मोक्ष होता है उतना सन्यासी का आसानी से मोक्ष नहीं होता। गृहस्थ की तपश्चर्या सबसे ज्यादा होती है। गृहस्थ व्यक्ति आजीविका के निर्वाह के लिए चलता है और उसमें परिवार के अलावा सबका पोषण करता है। चतुर्द्वारम पुरुषम चतुर्मुखम चतुर्धा चैनम उपयाति वाचा बाहुभ्याम वाच उदराद उपस्था तेषाम द्वारम द्वारपालो विभूषेत। माने ये इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ करके द्वारपाल जैसे होता है ना, ऐसे मनुष्य को अपने इंद्रियों के दरवाजों पर बैठना चाहिए। और इंद्रियां यदि बाहर जाती हो तो द्वारपाल का ये काम होता है कि बाहर न जाने दे। दरवाजे पर बैठा है, कहां जा रहे हो साहब? कि हम बाहर जाए, नहीं नहीं जाने देंगे। तो नाक्षर दिव्य नाददीतान्य वित्तम, हाथ और पैर यदि संसार में जाने लगे कहां जा रहे हो? जुआ खेलने के? ना, जुआ नहीं खेलना। न अक्षर दिव्य, तुम्हारी शोभा जुआ खेलने में नहीं, हाथ से जुआ खेला जाता है। कि दूसरे का हम धन ले लेंगे? कि ना, धन नहीं लेना। अन्य वित्तम न आददीत, और न वायो नीयस्य सुतम प्रगृह्णात, नीच पुरुष की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, पुरुष का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। भिक्षा तो साधु लेते हैं, गृहस्थी नहीं लेते। तो किसी नीच कर्म करने वाले व्यक्ति का कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अपने हाथ से शस्त्र लेकर कभी क्रोध में किसी को मारना नहीं चाहिए। क्रुद्धो न चैव प्रहरित धीमान, ये गृहस्थ का काम होता है। तो वो अपने काम को, क्रोध को किस प्रकार से जीतता है, कितनी बड़ी तपस्या है। वाणी से वाग द्वारम, अपने वाणी के ऊपर पहरेदार बनकर के, न आक्रोशम रिच्छे न वृथा वदेच्च न पैशुनम जनवादन च कुरियात, कभी भी किसी को डांट करके कोई बात न कहे, कभी किसी को गाली वगैरह न निकाले, कभी किसी की निंदा न करे, और प्रिय वाणी बोले, थोड़े बोले, सत्य बात बोले, सावधानी से बोले, ये वाणी का पहरा पूरा हो जाता है। और नानाशन स्यान, अनाशन न स्याद, बिल्कुल ही भोजन नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं हो, और न महाशन स्याद, और खूब भोजन कर ले, एक साथ खूब सारा भोजन कर ले ऐसा भी नहीं हो। और लोलुप पुरुषों के भोजन का लोलुप भी नहीं होना चाहिए। यात्रार्थम जितने से निर्वाह हो सकता हो पवित्र भोजन करे, ये उदर का द्वारपाल हो गया। ऐसे ही अपने अग्नि की साक्षी में जिस पत्नी को स्वीकार किया है उसके अलावा कहीं दृष्टि न डाले। ऐसे अपने सब इंद्रियों को, इंद्रियों के दरवाजे को गुप्त रखना चाहिए। और वह यदि इंद्रियों से, ये इंद्रियों के मार्ग से इंद्रियां संसार में भटकती है और आप खूब बड़े बड़े यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, आत्मचिंतन करते हो, उसे कोई लाभ नहीं है। जब तक इंद्रियों को नहीं रोका तब तक कुछ नहीं होगा। कितना ही सर्दी गर्मी सहन कर लो, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, जब तक आप प्राणियों को अभय नहीं बनाओगे और आप स्वयं निर्भय नहीं बनोगे, जब तक आप सुख और दुख को नहीं सहोगे, तब तक आपका ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। ऐसे ऐसे कपिल भगवान ने उपदेश दिए। तब वो स्मूई रश्मि था, वो स्मूई रश्मि ने अंदर से आवाज कहा कि महाराज मैं तो इस गाय के पास इसलिए आया आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए। तुम हमारे पास यूं क्यों नहीं आए? कि महाराज ये तो इसलिए नहीं आया कि इससे गाय को देखकर जब आप उपदेश देंगे, गाय के अंदर से वाणी निकल रही है ऐसा समझकर आप जो उपदेश देंगे उस उपदेश में और बात थी और प्रत्यक्ष में आता तो और बात करते, इसलिए मैंने गाय के शरीर में बैठकर उपदेश लिया। अब देखो एक बहुत अच्छी बात आती अंतिम, ये बात है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि महाराज धर्म अर्थ और काम इनके अंदर किसका विशेष सेवन करने से मनुष्य को लाभ होता है? धर्म का सेवन करने से होता है कि अर्थ का होता है कि काम का सेवन करने से विशेष लाभ होता है? क्योंकि मोक्ष मिलेगा वो तो इन तीनों का पालन करने के बाद मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, अर्थ का पालन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, और काम का पालन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष के लिए धर्म अर्थ काम तीनों में श्रेष्ठ क्या चीज होती है? पितामह भीष्म हंसे कि बेटा जानते हो तुम, फिर भी तुम पूछते हो, तो मैं तुमको एक बहुत अच्छी कथा सुनाता हूं। देखो एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, इतना गरीब था कि उसके पास वो बेचारा कपोती वृत्ति से काम चलाता था, कबूतर की वृत्ति से। कबूतर के पास संग्रह थोड़ी आता, थोड़ा यहां बिखेरा था यहां से ले लिया, वहां बिखरा हुआ है तो वहां से ले लिया। इसको कपोती वृत्ति बोलते, कापोती वृत्ति। ऐसे ही जंगलों में से थोड़ा थोड़ा अन्न बीनता था। उसके मन में आया कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूं। क्यों? यज्ञ करूंगा तो खूब सा धन मिल जाएगा, और जब धन मिल जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने यज्ञ की सोची, पर यज्ञ के लिए तो पैसा चाहिए, वस्तु चाहिए, क्या करें? तब उसने कहा किसी देवता को मनाओ। तब वो प्रत्येक देवता को मनाए, कभी इंद्र को, कभी अग्नि को, कभी वरुण को, कभी पूषा को, कभी किसको, देवताओं को मनावे, देवता कोई सुने ही नहीं। भक्तिया नचैवाध्यगच्छत धनम, सब देवताओं की भक्ति की, पर उसको तो पैसा मिला ही नहीं, पैसा मिले तो यज्ञ करूं। तब उसने विचार किया कि ऐसा कौन सा देवता है जिसको कोई मनुष्य नहीं चाहता है? नहीं तो भाई हर देवता के पास मनुष्यों की भीड़ लगी हुई है। अब इंद्र को मैं अकेला थोड़ी चाहता हूं, सैकड़ों आदमी चाहते हैं। ऐसे करते करते उसने कौन ऐसा हो सकता है, अब उसको तो पता नहीं। उसने कहा हे देवताओं, जिसको कोई नहीं पूछता हो वो देवता मेरे पास आए, मैं उसकी पूजा करूं जिसको कोई नहीं पूछता। तब वहां पर एक कुंडधार नाम का बादल है, वो आया, मेघ है, ये 49 मेघ है, वो आया शरीर सहित। उसको देखा उन्होंने, स्वरूप देखा उसका, बोला वोला वो भी नहीं, स्वरूप देखा कि बस आप वो देवता है महाराज जिनको कोई नहीं चाहता। तो उसके ब्राह्मण के मन में भक्ति पैदा हो गई। तब उस ब्राह्मण ने उसकी भक्ति की, ब्राह्मण के मन में आया एषमे दास्यति धनम संभृतम, ये मुझे खूब धन देगा, खूब धनवान हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। अब धूप दीप से और अपने अंदर ध्यान करते हुए उसकी पूजा करे खूब। थोड़े दिनों के बाद वो देवता था कुंडधार नाम का, वो उसकी पूजा से संतुष्ट होकर आकाशवाणी से कहने लगा कि देखो भाई, इस संसार के अंदर ब्रह्म हत्या का कोई न कोई प्रायश्चित है। ब्रह्म हत्या हो गई तो प्रायश्चित हो सकता है, मदिरा पान कर लिया तो उसका भी प्रायश्चित हो सकता है, चोरी कर ली तो उसका भी प्रायश्चित हो सकता है, और कोई प्रतिज्ञा यदि उसकी टूट गई तो उसका भी प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतघ्नि आदमी का कोई प्रायश्चित नहीं है, विश्वासघात करने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं। आपने हमारा बहुत भला किया, लेकिन हम उस आपके भलाई को तो भूल गए, उल्टा हम आपके बुराई करने में लग गए, तो हमारा उद्धार कभी, हमारे पास कोई प्रायश्चित का कर्म ही नहीं है। आशा का बेटा अधर्म है, आशा है उसका बेटा अधर्म है, असूया का बेटा क्रोध है, और दुष्टता का बेटा लोभ है, लेकिन कृतघ्नो नार्हति प्रजाम, कृतघ्नि आदमी के तो कोई बेटा संतान होती नहीं है, ऐसे कृतघ्नि। तो वो जो कुंडधार नाम का देवता था उसकी और ज्यादा पूजा की, तो एक दिन वो सो गया, सोने पर उसने स्वप्न में देखा कि वो कुंडधार नाम का देवता उसके पास आया और उसको कहा, ए ब्राह्मण चलो हम तुमको देवताओं के पास ले चलते हैं, वहां हम तुमको मनचाहा वरदान दिवाएंगे। तो स्वप्न के अंदर ही वो ब्राह्मण कुंडधार के साथ साथ देवताओं के वहां पर चला गया। देवताओं के वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी, वहां यक्षराज मणिभद्र नाम के देवता खड़े हुए थे, एक एक से पूछते, तुमने कौन सा कर्म किया है, तुम क्या चाहते हो, धन चाहते हो धन ले जाओ, राज्य चाहते हो राज्य ले जाओ, तत्र देवा प्रयच्छन्ति राज्यानि च सुखानि च धनानि च शुभै कर्मभिः आरब्धा प्रच्छिनन्ति शुभेषु च, और जो पाप करते उनको दंड भी देते थे। ऐसों के बीच में उसने स्वप्न देखा कि मेरा हाथ पकड़ करके वो कुंडधार है वो मणिभद्र नाम के देवता के पास ले गया। सुनो मणिभद्र जी सुनो, अरे आइए कुंडधार जी, क्या बात है, कैसे आए? ये ब्राह्मण बहुत गरीब है महाराज, और मैंने इसकी आराधना से प्रसन्न होकर आपके पास लाना उचित समझा है, इसको खूब सुख मिले, ऐसा कोई आप उपाय बताओ। तो वो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि बा अब मुझे धन मिल जाएगा। मणिभद्र ने कहा, बोलो, ब्राह्मण से कहा, बोलो उत्तिष्ठ भद्रंते, बोलो क्या चाहते हो? तो कुंडधारी कहने लगा, महाराज इसकी तरफ से मैं ही बात करूंगा, हाँ तुम बोलो, धन चाहो तो धन ले, तुम्हारा ब्राह्मण सुखी हो जाए, तुम राज्य चाहो तो राज्य ले लो, जो चाहो सब दे दो, बोलो तुम क्या चाहते हो? कुंडधार ने कहा, नहीं महाराज, ये ब्राह्मण धन नहीं चाहता है, ये ब्राह्मण राज्य नहीं चाहता है, ये ब्राह्मण कुछ नहीं चाहता है, ये बस धर्म के अंदर बुद्धि चाहता है कि मेरी धर्म में बुद्धि बनी रहे। धर्मोश्चरमताम बुद्धिर धर्मम चैवोपजीवतु, और ये चाहता है कि धर्म के द्वारा ही मेरा निर्वाह हो और मैं धन वगैरह नहीं चाहता हूं, बस ऐसी कृपा कर दो, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। अच्छी बात है, ये सदा धर्म में रहेगा, इसकी बुद्धि धर्म में रहेगी। अरे धर्म का फल तो राज्य सुख वगैरह सब कुछ होता है, चलो जाओ, इसको शारीरिक कोई कष्ट नहीं होगा और ये धर्म में रहेगा। पितामह भीष्म कहने लगे बेटा, उसके बाद यूं चेत हुआ, उसको चेत हुआ तो उसने सोचा ब्राह्मण ने कि अरे कुंडधार, इतनी देर तक मैंने तेरी उपासना की और तू मुझे इतने बड़े देवता के पास ले गया, मैं तो धन ही चाहता था और तुमने कह दिया ये धन वगैरह राज्य वगैरह नहीं चाहता, ये तो धर्म चाहता है। अरे धर्म तो मैं ही जानता हूं, ब्राह्मण हूं, तो ये क्या किया तुमने? अयम न सुकृतम वेत्ति, ये कुंडधार तो मेरी भावना को समझ नहीं सका। गच्छामि, मत चलो अब ठीक है, हमको तो ये धर्म का वरदान मिला, सब कुछ छोड़ छाड़ करके धर्म में चला गया, वो वन में चला गया। अब वन में गया, वहां जाकर उसने बड़ी भारी वैराग्य पूर्वक तपस्या की और वहां कोई कंदमूल फल वगैरह मिलता, ये अमुक देवता के लिए, अमुक के लिए, अमुक के लिए, सबको भेंट करने के बाद बाकी जो बचता है उससे भोजन करता, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर केवल सूखे पत्ते खाता, फिर वो भी छोड़ दिया, वायु भक्षय, फिर पानी पीने लगा, वो भी छोड़ दिया। उसके शरीर में शक्ति कम नहीं हुई, तपस्या से उसके अंदर शक्ति बनी रही। ऐसे करते 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 उसकी तपस्या बढ़ी 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 बढ़ी, तो ऐसी बढ़ी उसके अंदर ये भाव आने लगा कि ओहो, मेरी वाणी में इतनी शक्ति आ गई, अब मैं चाहे जिसको धन दे सकता हूं। तुष्ट कस्यचिद एव है, मिथ्यावांग न मैं भवन मम, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। फिर और उसने तपस्या चालू की, फिर कहा धन ही नहीं, मैं किसी को राज्य भी दे सकता हूं। ऐसे उसके अंदर तपस्या करते हुए बात पैदा हुई। इतने में ही कुंडधार ने देखा उस देवता ने, वो बराबर उसकी अव्यक्त रूप से रक्षा करता था, कि अरे इसमें तो अब तपस्या का अभिमान आ गया। तब वो सोचा कि कहीं ये मेरी तपस्या की है, मेरी आराधना की है, मैंने इसको धर्म के अंदर बुद्धि लगने की प्रार्थना मणिभद्र आदि से की है, अब इसकी बुद्धि खराब न हो जाए। तो साक्षात प्रकट हुआ वो कुंडधार। कुंडधार ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी वाणी में तपस्या के द्वारा इतना बल आ गया है कि तुम खूब आनंद के साथ राज्य धन चाहे जो कुछ दे सकते हो, परंतु परंतु क्या महाराज, देखो तुम्हारी तपशक्ति से देखो जिनके पास धन है उनकी क्या दशा होती है। दिखाया ये कितना धन था, अब उसने ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली कि पहले जीवन क्या था, कितना धनी, कितने लोग उसके पास, कैसा धन और कितने लोग याचना करने वाले, कैसे झड़क झड़क के बोलता था, उसकी देखो ये क्या दशा हो रही है। वो देखो वो धनी आदमी कितना लोभी था, उसकी क्या दशा हो रही, उसकी क्या दशा हो रही, उनकी क्या दशा हो रही। ब्राह्मण के मन, अरे महाराज ये तो धनी आदमियों की दशा है, मैं ब्राह्मण होकर धन लेकर के और ये यज्ञ करता तो मैं तो महाराज ऐसी नरक में मैं पड़ जाता। अब देखो इधर देखो, ये जो राज्य लेने वाले उनको देखो, देखो राज्य लेने जो राज्य की इच्छा करते थे उनकी दशा देखो। सबको देखने के बाद वो ब्राह्मण कुंडधार के चरणों में गिर गया कि महाराज इस संसार में भगवत स्मरण से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई काम नहीं, कोई अर्थ नहीं, सबसे बड़ा स्मरण भगवत स्मरण है, वही करना चाहिए, ये मेरे ऊपर असर पड़ गया। पश्य पश्य जब हुई है तो हम बार बार देखना कहीं तुम अर्थ के अंदर माने धन के अंदर और में आसक्त न हो जाना। तब फिर उसने ततो अपश्य सकामम क्रोधम लोभम भयम मदम निद्राम तंद्रीम आलस्यम, ऐसे ऐसे पुरुषों को देखा, सबको छोड़ छाड़ करके फिर वो भगवान के प्रेम में लग गया। कुंडधार ने कहा कि ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण ने ये जरूर कहा कि कुंडधार जी, मैंने तो आपको स्वप्न के अंदर देख करके विचार किया कि मेरी भावना को आप समझते नहीं हो और ये नहीं हो, मुझे तो महाराज बचा लिया आपने, क्षमा करना। कहा गया है तो हम क्षमा तो पहले से ही सोच करके चलते हैं। इस प्रकार से ये दशा होती है। इसलिए भाई युधिष्ठिर, सबसे बड़ा धर्म है धर्मे तु परमम सुखम, परमात्मा की आराधना करना सबसे बड़ा धर्म, और इसी में ही शांति की प्राप्ति होती है।
मन नारायण नारायण नारायण,
मन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन 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 नारायण नारायण।